नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। ईडी ने जौनपुर से स्पा सांसद बाबू सिंह खुशवाहा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड पर स्थित खुशवाहा की करोड़ों रुपए की जमीन जब्त की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह खुशवाहा की जमीन कानपुर रोड स्थित स्कूटर इंडिया के सामने स्थित है। ईडी की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर भी साथ ले गई है। बसपा सरकार में हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल तत्कालीन मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह खुशवाहा की लखनऊ में स्थित बेशकीमती जमीन को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है। संबंधित भूमि पर बाबू सिंह द्वारा संचालित हिंदी अखबार की प्रिंटिंग मशीन लगी है, साथ ही कृषि योग्य भूमि भी है। ईडी को बाबू सिंह खुशवाहा की संपत्तियों की जांच में इस जमीन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार से अर्जित इस भूमि को जब्त किया गया है। 10 वर्षों से ईडी बाबू सिंह खुशवाहा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जाँच कर रही है। इसके अलावा ईडी ने आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान ईडी को पता चला था कि खुशवाहा ने घोटालों की रकम से कई बेनामी संपत्ति बनाई है। ऐसे में उन संपत्तियों का पता लगाया था जिनका बेनामीदार कोई और था। इसी में से एक कानपुर रोड स्थित जमीन भी थी। इसे खुशवाहा ने विंध्य शक्ति सीमेंट कंपनी के नाम से खरीदा था। ईडी ने जाँच में पाया था कि स्पा सांसद बाबू सिंह खुशवाहा ने NRHM और उत्तर प्रदेश श्रम निर्माण एवं सहकारी संघ लिमिटेड में भ्रष्टाचार कर कमाई गई अरबों की रकम को बेनामी संपत्तियों में लगाया था। एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि बहुत सी संपत्तियां बाबू सिंह खुशवाहा के परिवार और कुछ उनके करीबियों के नाम पर हैं। ईडी अब तक करीब 250 करोड़ की संपत्ति सीज कर चुकी है। बाबू सिंह खुशवाहा ने वर्षों का राजनीतिक वनवास काटने के बाद जौनपुर से लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने टिकट पर जौनपुर सीट से उतारा था। उन्होंने भाजपा के कृपा शंकर सिंह को मात दी थी। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह के भाजपा को समर्थन दिए जाने के बाद भी खुशवाहा ने अपनी जीत का परचम लहराया। दिल्ली सरकार के आशा किरण शेल्टर होम में 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत को लेकर फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली सरकार का आशा किरण शेल्टर होम है, जहां महज 20 दिनों के भीतर ही 13 बच्चों की मौत हो गई है। इसको लेकर आतिशी ने कहा कि उनको मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम में 13 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी मौत कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हुई है। इसी बात से ये पता चलता है कि बच्चों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि यह खबर बहुत आश्चर्य करने वाली है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन अगर ये घटना सच है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक गंभीर मुद्दा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। जांच के लिए आतिशी ने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के 48 घंटे के भीतर ही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेल्टर होम में बच्चों की मौत को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम की जाँच के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी जा रही है। ये टीम शेल्टर होम से जुड़े सभी अधिकारियों और लोगों से मुलाकात करेगी। इसके साथ ही बच्चों की मौत का पता लगाने की कोशिश करेगी। शेल्टर होम में इस साल अभी तक कुल 27 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि बीते 20 दिनों के भीतर ही 13 बच्चों की मौत हुई है। इस मामले को लेकर SDM का कहना है कि बच्चों की मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसकी जाँच चल रही है। इस मामले पर आतिशी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कार्रवाई होगी। इसराइल समेत मिडल ईस्ट के देशों में तनाव को देखते हुए एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक के लिए तेल अवीव जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में हाल ही में हमास के एक बड़े नेता की हत्या के बाद मध्य पूर्व के देशों में तनाव के हालात बन गए हैं। ईरान का आरोप है कि इस हत्या में इसराइल का हाथ है, उसने इसका बदला लेने का ऐलान किया है। इसकी वजह से ईरान से लेकर इसराइल तक और मध्य पूर्व के अन्य देशों में जंग की स्थिति बन गई है। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान आए हुए हैं। वहां वो जिस इमारत में ठहरे हुए थे उसी पर हवाई हमला करके उसे उड़ा दिया गया। घटना में उनका एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया था। इस घटना का मिडिल ईस्ट के देशों में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई। कई देशों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ने की चेतावनी दी है। ईरान ने घटना के पीछे इसराइल का हाथ बताते हुए बदला लेने की धमकी दी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।